समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, आप सुनना शुरू कर चुके हैं आकाशवाणी गोल्ड का कार्यक्रम आज सवेरे। श्रोताओं, रोजाना की तरह आज भी आपको देंगे देश दुनिया की हलचल, इतिहास के पन्नों को पलटेंगे और जानेंगे कि आज का दिन क्यों विशेष है और उन खास हस्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस है। आज सवेरे के इस अंक के साथ मैं हूं सरफिरोजी और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट सुभद्रा रामचंद्रन। गुड मॉर्निंग सुभद्रा।
Hello there, Sarfirozi. Good morning to you and all our listeners tuning to us this beautiful Monday morning. Of course, Sarfirozi, we have no time for Monday blues today because it is a great day and we'll tell you all about it. So friends, stay tuned to find that out. And of course, now try to, you know, we are going to begin this edition of Aaj Sabere with some news headlines. Sarfirozi?
Ji, bilkul Subhadra. राष्ट्र आज भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की 134वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सहित कई केंद्रीय मंत्री, सांसद और अन्य गणमान्य लोग आज संसद परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम्बेडकर जयंती पर आज हरियाणा के हिसार में अयोध्या और हिसार के बीच वाणिज्यिक उड़ान का शुभारंभ करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार में महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के 410 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास भी करेंगे। इसके बाद श्री मोदी एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री यमुना नगर में विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। 800 मेगावाट क्षमता वाले दीन बंधु छोटू राम तापी विद्युत संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी यमुना नगर के मुकरपुर में कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र की आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री भारतमाला परियोजना के अंतर्गत 1,070 करोड़ रुपए की लागत से बने रेवाड़ी बाईपास परियोजना का उद्घाटन भी करेंगे। इससे दिल्ली नारनौल के बीच दूरी 1 घंटे से कम हो जाएगी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मोहन यादव एंड यूनियन मिनिस्टर फॉर रेलवेज अश्विनी वैष्णव फ्लैग्ड ऑफ 20155 एंड 56 डॉक्टर अम्बेडकर नगर कोटा New Delhi Express yesterday. While Mr. Birla attended the ceremony in Kota, Dr. Yadav and Mr. Vaishnav joined through video conferencing from New Delhi. Union Minister of State for Women and Child Development, Savitri Thakur, was in Dr. Ambedkar Nagar. In his address, Mr. Birla said the train will be beneficial for education hub Kota in Rajasthan, spiritual center Ujjain, commercial center Indore in Madhya Pradesh. He expressed happiness that the train has been flagged off from the birthplace of Dr. Ambedkar on the eve of his birth anniversary. Mr. Vaishnav said it is an important train as it will connect several crucial places in the country. He said with this train, the Ministry of Railways has started preparations for 2028 Ujjain Kumbh Mela. The minister said for railways projects, Madhya Pradesh has been allocated 14,745 crore rupees and Rajasthan has been allocated 9,960 crore rupees in the budget. Tamil New Year's Day is being celebrated today. The birth of the month of Chitrai is based on a solar calendar. On that day, people visit temples and make a six-taste meal at home which is served in banana leaf. Arusuvai means catering to the six taste buds which are bitter, sweet, sour, spicy, salty and astringent. Also, Keralites across the globe are celebrating Vishu, the traditional New Year today. We have more from our correspondent.
Vishu, the astronomical new year, is the festival of harvest and prosperity in Kerala. Lord Krishna is worshipped on this auspicious day. Vishu symbolizes abundance and new beginnings. The day begins with Vishukani, the first thing to be seen on the day, in which Lord Krishna is adored with Kanikonna flowers, Kani Vellari, fruits, vegetables, gold, coins, etc. In major temples like Guruvayur, Sri Padmanabha Swami Temple, Shabrimala, etc., Vishukani and special rituals are being held today, where large number of devotees are flocking from early morning. Vishu is marked with Vishukainitam, special sadhya, lights, family get-together, filling the atmosphere with joy and hope for a great year ahead. Mayusha, Akashvani News, Thiruvananthapuram.
The U.S. will impose separate tariffs on imports of smartphones, computers, semiconductors and other components in the next 1 to 2 months. This was stated by U.S. Commerce Secretary Howard Lutnick last night. The move comes a day after the U.S. exempted electronics imports, including semiconductors, from reciprocal tariffs. Lutnick also highlighted the need to build chips and flat panel televisions in the United States compared to relying on imports from South Asian nations. Speaking to TV channel, the Commerce Secretary said all those products are going to come under semiconductors and they're going to have a special focus type of tariff to make sure that those products get reshored.
भारत ने तीरंदाजी विश्व कप के पहले चरण में पुरुष रिकर्व टीम स्पर्धा का रजत पदक जीत लिया है। अमेरिका के आर्बनडेल में कल रात हुए फाइनल में भारतीय टीम में धीरज बोम्मा देवड़ा, तरुणदीप रॉय और अतनु दास शामिल थे। प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक चीन ने जीता। इस सत्र में भारत का ये तीसरा पदक है। इससे पहले भारत ने कंपाउंड मिक्स टीम स्पर्धा में स्वर्ण और कंपाउंड पुरुष टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता था। धीरज आज पुरुष रिकर्व व्यक्तिगत स्पर्धा में खेलेंगे।
I beg your pardon. We have an IPL news, Sarfarozi. Mumbai Indians beat Delhi Capitals by 12 runs in their IPL match at Arun Jaitley Stadium in Delhi last night. Sent in to bat, Tilak Varma hit a 33-ball 59 to power Mumbai Indians to 205 for 5. Ryan Rickleton, Surya Kumar Yadav and Naman Dheer also made useful contributions. In reply, Delhi Capitals were all out for 193 in 19 overs, despite Karun Nair's 40-ball 89. Khan Sharma claimed 3 wickets, while Michel Santner took 2 wickets. For DC, Vipraj Nigam and Kuldeep Yadav snapped 2 wickets each, while Mukesh Kumar took 1. In another match yesterday, Royal Challengers Bengaluru defeated Rajasthan Royals by 9 wickets at Sawai Man Singh Stadium in Jaipur. Chasing the target of 174 runs, Royal Challengers Bengaluru scored 175 for the loss of only 1 wicket in 17.3 overs. Earlier, Rajasthan Royals put into bat scored 173 runs for 4 in stipulated 20 overs. In today's fixture, Lucknow Super Giants LSG will face Chennai Super Kings CSK at Ikana Cricket Stadium in Lucknow today. The match will start at 7:30 p.m.
श्रोताओं अब आपको देंगे महानगरों का हाल। शुरुआत कर रहे हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से। सुभद्रा, क्या जानकारी है इन महानगरों की?
यस, आई एम स्टार्टिंग विद न्यूज फ्रॉम चेन्नई। नेशनल स्टेटिस्टिक्स ऑफिस चेन्नई ऑर्गेनाइज अ रीजनल ट्रेनिंग कैंप फॉर द एनएसएस 80th राउंड ऑफ इट्स सोशियो इकोनॉमिक सर्वे ऑन कॉम्प्रिहेंसिव मॉड्यूलर सर्वे एजुकेशन along with the currently ongoing survey on household social consumption, health. A 3-month survey on the subject, comprehensive modular survey on education, will be carried out by the NSO. The NSO and State Directorates of Economics and Statistics are carrying out the survey on health jointly for a period of 1 year, starting from 1st January 2025. CMSE will be conducted by the NSO during April-June 2025. Deputy Director of General R. Manohar Chennai highlighted the importance of education survey, emphasized the pivotal role of surveys in evidence-based policy making. Highlighting the need for high quality and timely data, he urged the participants to ensure rigorous standards in data collection and processing. He also stressed the importance of proactive interaction with local authorities to facilitate the seamless implementation of surveys. The National Statistics Office will conduct comprehensive modular survey education from April to June 2025 as part of the NSS 80th round. The information collected in this survey will essentially be used for generating indicators relating to household expenditure on school education and private coaching tuition classes. The survey will cover only education-related expenditures incurred for the household members, including erstwhile household members who are currently enrolled in school education. Both formal and non-formal enrollment will be considered for collection of data. Further, paid as well as payable approaches will be adopted for recording education-related expenditure. The indicators generated based on the CMSE schedule will serve the requirement placed by the Department of School Education and Literacy. We have another news from Chennai. The Greater Chennai Corporation has cleared 16 abandoned cars from Marina Loop Road Beach, identified 5 illegal mechanic sheds. Steel fencing has been installed and the area will be monitored to prevent further misuse. Redevelopment plans are underway, including better lighting, approach roads and a proposed flyover connecting Srinivasapuram and Besant Nagar. The City Commissioner, J. Kumara Gurubaran, said that the stretch will be monitored using patrolling and CCTV and violators will be booked. Moving to Bengaluru now, Karnataka Raj Bhavan celebrated the Rajasthan Foundation Day in Bengaluru yesterday. In alignment with the vision of Ek Bharat, Shrestha Bharat, the foundation days of different states are celebrated in Raj Bhavans across the country to promote the spirit of national integration. Gracing the occasion, the Governor Thavarchand Gehlot informed that every state plays a vital role in the development of the nation. He added that it is our collective responsibility to contribute towards the vision of a developed India by 2047. Rajasthan's glorious history, rich cultural heritage and timeless tales of courage and sacrifice were honoured. The event was marked with cultural events showcasing the rich cultural tapestry of Rajasthan. The artists performed Rajasthani art, music and dance. Getting to Hyderabad now, BJP Telangana President and Union Minister G. Kishan Reddy and MOS Home B. Sanjay Kumar have cleaned the statues of Dr. B.R. Ambedkar at several places in Hyderabad and Karim Nagar ahead of the birth anniversary of the father of the Indian Constitution. Mr. Reddy said the Narendra Modi government had rededicated to fulfill the ideals of the Dr. Ambedkar, appealed to people to celebrate his birth anniversary as a major festival. The BJP had given a call to party workers to involve themselves in cleaning of Ambedkar statues all over the country, educate the masses by conducting workshops on his works. Union Minister of State for Home, Bandi Sanjay Kumar, purified the statue of Dr. Ambedkar at Karim Nagar and said that only Prime Minister Modi can carry forward the ideas of Dr. B.R. Ambedkar. He also took part in a bike rally organized by the BJP yesterday. The minister said Ambedkar Jayanti is being celebrated in 120 countries and said cleaning the statues means passing on their ideals to the next generations. He said that the credit for making 12 SC MPs ministers goes to the Modi government. Meanwhile, Telangana Governor Jishnu Dev Varma flagged off the Jai Bhim Padyatra yesterday from Raj Bhavan to mark the birth anniversary of Dr. Bharat Ratna, Dr. B.R. Ambedkar. The Padyatra, held under the Ministry of Youth Affairs and Sports, saw spirited participation from NCC cadets, scouts and guides, Raj Bhavan staff, who joined hands in paying tributes to the principal architect of the Indian Constitution and a towering figure in the fight for social justice. The governor paid rich tributes to Dr. B.R. Ambedkar on his birth anniversary, who played a pivotal role in shaping the constitution of our nation. Chief Minister A. Revanth Reddy paid tributes to Bharat Ratna Dr. Babasaheb Ambedkar on his birth anniversary today. He praised the efforts made by Ambedkar for the welfare of the downtrodden, worked tirelessly for the empowerment of the poor, weaker sections and women. He recalled that Ambedkar, who envisioned the future of the country with foresight and framed the constitution with vision, remained an inspiration for future generations.
शुक्रिया सुभद्रा महानगरों का हाल देने के लिए. अब बात करते हैं दिल्ली, मुंबई और कोलकाता की. दिल्ली की बात करें, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रीय परिवहन निगम ने न्यू अशोक नगर और सराय काले खां स्टेशन के बीच नमो भारत ट्रेन का ट्रायल रन शुरू कर दिया है. एनसीआरटीसी ने बताया कि ट्रेन को धीमी रफ्तार में न्यू अशोक नगर से सराय काले खां लाया गया. निगम के अनुसार इस ट्रायल की प्रक्रिया में सिग्नलिंग सिस्टम की अनुकूलता की जांच के लिए नमो भारत ट्रेन को मैनुअल तरीके से चलाया गया. एनसीआरटीसी ने कहा है कि परीक्षण में ट्रैक प्लेटफॉर्म, स्क्रीन डोर और ओवरहेड पावर सप्लाई सिस्टम जैसे विभिन्न सब सिस्टम के साथ ट्रेन के इंटीग्रेशन और इसके समन्वय का आकलन किया जाएगा और इसके साथ ही आगामी दिनों में ट्रेन के हाई स्पीड टेस्ट सहित व्यापक ट्रायल रन किए जाएंगे. दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि शहर के विद्यालयों में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से प्रेरित विशेष असेंबली सेशन आयोजित किए जाएंगे जिससे नई पीढ़ी को डॉक्टर अंबेडकर के विचारों, संघर्षों और योगदान को जानने में मदद मिलेगी. डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के अवसर पर विधानसभा में आयोजित एक वॉकथॉन पर उन्होंने ये बात कही. श्रीमती रेखा गुप्ता ने कहा कि सभी को बाबा साहब का केवल स्मरण नहीं करना है बल्कि उनके कार्यों को अपने जीवन में भी उतारना है. मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार डॉक्टर आम्बेडकर के दिखाए हुए मार्ग पर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है.
दिल्ली सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पे उनके दिए हुए सिद्धांतों का अनुपालना करते हुए काम करे और दिल्ली के प्रत्येक नागरिक को जो उनका अधिकार है शिक्षा स्वास्थ्य समानता सुरक्षा वो सारी चीजें दिल्ली की जनता को मिले। दिल्ली सरकार के प्रत्येक स्कूल में बाबा साहब का जीवन चरित्र बच्चों को दिखाया जाए सुनाया जाए इसकी व्यवस्थाएं की है।
और अब समाचार मुंबई से। बृहन मुंबई नगर पालिका ने निजी टैंकर ऑपरेटरों की हड़ताल से उत्पन्न जल संकट से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन कानून लागू कर दिया है। इसके साथ ही बीएमसी ने निजी कुओं बोरवेल और पानी के टैंकरों को अपने नियंत्रण में ले लिया है। बीएमसी ने गर्मी के दौरान पानी की निर्बाध आपूर्ति के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया लागू की है। मुंबई में मीरा भयंदर वसई विरार पुलिस ने राज्य सरकार के 100 दिवसीय परिवर्तन कार्यक्रम के अंतर्गत अपना व्हाट्सएप चैनल MBVV पुलिस लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक जुड़ाव को मजबूत करना और साइबर अपराध वित्तीय धोखाधड़ी नशीली दवाओं के दुरुपयोग और महिलाओं बच्चों तथा वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ अपराध से निपटने के लिए जागरूकता बढ़ाना है। नवी मुंबई पुलिस आयुक्तालय पुलिस कर्मियों के बच्चों को रोजगार प्रदान करने के लिए मंगलवार को बड़े पैमाने पर रोजगार मेले का आयोजन कर रहा है। इसका उद्देश्य नवी मुंबई पुलिस अन्य पुलिस इकाइयों और राज्य रिजर्व पुलिस बल के सेवारत और सेवानिवृत्त अधिकारियों के बच्चों को करियर के अवसर खोजने में मदद करना है। इस मेले में 100 से अधिक कंपनियों द्वारा 2000 नौकरियों के उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है। और अब बात कोलकाता की। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस ने कहा है कि मुर्शिदाबाद में किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त केंद्रीय बल मौजूद है। राज्य पुलिस स्थिति से सख्ती से निपट रही है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से इस मुद्दे पर चर्चा हुई है और गृह मंत्रालय जमीनी हालात पर नजर रखे हुए है। राज्यपाल ने कहा कि उपद्रवियों से सख्ती से निपटा जाएगा। श्रोताओं, अब आपको देते हैं महानगरों के मौसम की जानकारी। शुरुआत कर रहे हैं दिल्ली से। राजधानी दिल्ली में हल्के बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान के 20 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 37 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई में भी आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान के 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान के 22 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान के 35 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और सुभद्रा, आपके पास महानगरों के मौसम की क्या जानकारी है?
यस सर फिरोजी, वी हैव चेन्नई इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 29 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 38 डिग्रीज। बेंगलुरु इज एक्सपेक्टेड टू हैव जनरली क्लाउडी स्काई विद लाइट रेन। द मिनिमम टेम्परेचर वाज 21 डिग्री सेल्सियस, द मैक्सिमम विल बी अराउंड 34। हैदराबाद इज एक्सपेक्टेड टू हैव पार्टली क्लाउडी स्काई विद हेज। द टेम्परेचर विल हवर बिटवीन अ मिनिमम ऑफ 24 डिग्रीज एंड अ मैक्सिमम ऑफ 39 डिग्री सेल्सियस।
और श्रोताओं, अब समय है कि इतिहास के पन्नों को पलटा जाए और जाने कि आज का दिन खास क्यों है। तो सुभद्रा, कहाँ से शुरू करें?
यस, आई एम गोइंग टू द ईयर 1828। सरफरोजी, द वेरी फर्स्ट डिक्शनरी ऑफ अमेरिकन स्टाइल इंग्लिश वॉज पब्लिश्ड बाय नोआ वेबस्टर एज द अमेरिकन डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। एंड इन 1865 एब्राहम लिंकन, द 16th प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, वॉज असैसिनेटेड बाय well-known stage actor John Wilkes Booth on this April day while attending the play Our American Cousin at Ford Theatre in Washington, D.C., shot in the head as he watched the play. And 1894, the first ever commercial motion picture house opened in New York City using 10 kinetoscopes, a device for peep show viewing of films. And 1903, on this day, a young American bacteriologist, Dr. Harry Plotz, who was an expert on the impact of microorganisms on animals, had created the first ever vaccine against typhoid.
और आज के ही दिन 1912 में ब्रिटेन के साउथैम्पटन से अमेरिका के न्यूयॉर्क के लिए अपनी पहली यात्रा पर निकला यात्रीपोत टाइटैनिक हिमखंड से टकराकर डूब गया।
And 1939, this day, the classic American film The Grapes of Wrath was released. This directed by John Ford, it starred Henry Fonda and was based on Pulitzer Prize winning novel by John Steinbeck. And 1952, three integrated railway zones, northern, northeastern and eastern, was inaugurated. And in 1988, Bollywood actor Ashok Kumar received the Dada Saab Phalke Award.
और 2006 में आज के ही दिन चीन में पहला बौद्ध विश्व सम्मेलन शुरू हुआ। 2008 में स्वतंत्र बांग्लादेश बनने के बाद पहली बार 14 अप्रैल 2008 को भारत और बांग्लादेश के बीच रेल सेवा शुरू हुई। हालांकि 1965 तक ढाका और कोलकाता के बीच रेल संपर्क था, लेकिन 1965 के युद्ध के समय ट्रेन का संचालन रोक दिया गया।
एंड 2016 दिस डे एट द फॉक्स थिएटर इन अटलांटा अमेरिकन सिंगर सॉन्गराइटर प्रिंस प्लेज हिज लास्ट कॉन्सर्ट एज ही डाइज अ वीक लेटर। हिज लास्ट सॉन्ग ऑफ कोर्स वाज पर्पल रेन।
और अब वक्त में थोड़ा सा पीछे चले तो 2010 में चीन के गिगाई में 6.9 तीव्रता का भूकंप आया। लगभग 2700 लोगों की मौत हुई और पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड और ओडिशा में आज के दिन चक्रवाती तूफान में 123 लोगों की जान गई। श्रोताओं, अब समय है उन खास हस्तियों को याद करने का जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिवस है। आज सबसे पहले याद कर रहे हैं जमशेद जी जीजा भाई को, जिनकी आज पुण्यतिथि है। ये भारतीय पारसी व्यापारी थे। इन्होंने चीन के साथ कपास के व्यापार में सफलता पाई। जमशेद जी जीजा भाई का जन्म 15 जुलाई 1783 ईस्वी को एक गरीब परिवार में हुआ। आर्थिक तंगी के कारण वे शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके, लेकिन उनका व्यवसाय कौशल कमाल का था। इन्होंने अपने व्यापार का भारत के बाहर विस्तार किया। ये महारानी विक्टोरिया द्वारा सम्मानित होने वाले पहले भारतीय थे।
And he was called the father of Hindi travel literature, a scholar, a genius, Kedarnath Pandey, alias Rahul Sankithyayan, left this world in the year 1963 at the age of 70. Of course, winner of two awards, Sahitya Academy 1958 and Padma Bhushan 1963. And friends, now tributes to the great man, once again, the father of our constitution, Bhimrao Ramji Ambedkar, who took birth this day in the year 1891, the architect of the Constitution of India and a founding father of our nation, the Republic of India, leading activist, social reformer who gave his life working for the upliftment of the socially backward classes of India.
Ambedkar ne Mahar Satyagraha jaise mahatvapurna andolano ka bhi netritva kiya. Ambedkar na sirf दलितों के नेता थे बल्कि एक राष्ट्रीय नायक भी थे, जिन्होंने एक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण भारत का सपना देखा था। इनका जीवन हमें समानता के लिए लड़ना, शिक्षा को महत्व देना और अन्याय के सामने कभी हार ना मानना सिखाता है। सुभद्रा, इनकी विरासत आधुनिक भारत को आकार दे रही है।
Yes, of course, academically trained as a jurist, he went on to become the first law minister of free India. The constitution drafted by him aimed to bring about a social revolution in the country, freeing it from any sort of discrimination. And now, friends, we have excerpts from one of his speeches in the Constituent Assembly.
So far as the ultimate goal is concerned, I think none of us need have any apprehension. None of us need have any doubt. But my fear, which I must express clearly, is this. Our difficulty, as I said, is not about the ultimate future. Our difficulty is how to make the heterogeneous mass that we have today take a decision in common and march in a cooperative way on that road which is bound to lead us to unity. Our difficulty is not with regard to the ultimate. Our difficulty is with regard to the beginning.
Sarfarozi, you know, the power of music is immense. Music, be it Indian or Western, it heals your soul, transports you to another plane, another dimension. Our tribute to sarod player Ustad Ali Akbar Khan, a Hindustani classical musician of the Mehar Gharana, known for his virtuosity. Trained as a classical musician and instrumentalist by his father, Alauddin Khan, he also composed several classical rags and film scores. And of course, he established a music school in Calcutta in 1956, the Ali Akbar College of Music in 1967, which moved with him to the United States. Khan was instrumental in popularizing Indian classical music in the West, both as a performer and as a teacher. He went to the United States in 1955 on the invitation of violinist Yehudi Menuhin and later settled in California. Khan was accorded India's second highest civilian order, the Padma Vibhushan, in 1989. Nominated 5 times for the Grammy Award, he was a recipient of the MacArthur Fellowship and the National Endowment for the Arts National Heritage Fellowship. You are listening to excerpts from one of his very early recordings of Rag Pilu. Enjoy.
आज डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जी की पुण्यतिथि है, जिन्हें आधुनिक भारत के विश्वकर्मा के रूप में बड़े सम्मान के साथ याद किया जाता है। अपने समय के बहुत बड़े इंजीनियर, वैज्ञानिक और निर्माता के रूप में देश की सेवा में अपना जीवन समर्पित करने वाले डॉक्टर मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया को भारत ही नहीं बल्कि विश्व की महान प्रतिभाओं में गिना जाता है। इन्हें 1912 में मैसूर के महाराजा ने विश्वेश्वरैया को वहां का दीवान बना दिया और इस पद पर रहते हुए इन्होंने मैसूर बैंक, मलनाड सुधार योजना, इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ बेंगलोर, मैसूर विश्वविद्यालय और ऊर्जा बनाने के लिए पावर स्टेशन जैसी परियोजनाओं और संस्थाओं का उपहार दिया। इन्हें सन 1955 में भारत रत्न प्रदान किया गया। आज हम नितिन बोस को भी याद कर रहे हैं, जिनकी आज पुण्यतिथि है। ये भारतीय सिनेमा के प्रारंभिक समर्थकों में से एक, प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, छायाकार और लेखक थे। नितिन बोस ने अपने सिने कैरियर में 6 मूक फिल्मों सहित 50 से भी अधिक फिल्मों का निर्देशन और छायांकन किया। यहां तक कि फिल्मों में प्लेबैक का श्रेय नितिन बोस को ही जाता है। साल 1935 में रिलीज हुई उनकी बंगाली फिल्म भाग्य चक्र में सबसे पहले प्लेबैक सिंगिंग का इस्तेमाल किया गया। अपने फिल्मी करियर में इन्होंने कई सुपरहिट फिल्में दी। इन्होंने फिल्म दुश्मन, मिलन, दीदार, गंगा जमुना और कठपुतली जैसी फिल्में बनाई। इनके विशिष्ट योगदान के लिए इन्हें वर्ष 1977 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आइए सुनते हैं इनकी फिल्म का एक गीत।
इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, नेता तुम्ही हो कल के।
इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा,
नेता। And friends. Hello, 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 my dear friends. I'm certain fans of Western music out there who are with us this Monday morning will be able to identify this very famous guitar riff and this great song, of course. This sound emanates from the electric guitar of Ritchie Blackmore, whose contribution with Deep Purple and Rainbow reshaped the boundaries of hard rock and heavy metal made in England. Today, 14th April, this guitar maestro Ritchie Blackmore, the founding member of the legendary British rock band Deep Purple and Rainbow, turns 80 years of age. Ritchie gets his first guitar at age 12, but his father lays down a condition that he has to learn the classical guitar if he wants to pursue a career in music. So after one solid year of classical lessons, Blackmore gets to play the sound he loves. After his successful stint with Deep Purple and his own outfit Rainbow, he turns to Renaissance folk music, encouraged by his girlfriend, singer-musician Candice Knight. Now she's married to him. They have a band called Blackmore's Night, a beautiful tune from Ritchie and Candice. Shadow of the Moon, with only acoustic instruments. Our best wishes to a true guitar legend. It's been said that, you know, friends, his masterpiece solos have inspired numerous youngsters to pick up a guitar and play professionally.
आज शमशाद बेगम की जयंती है, जो भारतीय सिनेमा में हिंदी फिल्मों की शुरुआती पार्श्व गायिकाओं में से एक थी। इनके गाने जैसे कभी यार कभी पार, कजरा मोहब्बत वाला, लेके पहला पहला प्यार आज भी लोगों की जबान पर हैं। वर्ष 2009 में भारत सरकार ने शमशाद बेगम को कला के क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया। आइए सुनते हैं फिल्म मुगले आजम से उनका एक गीत।
हम भी देखेंगे,
श्रोताओं, अब समय आ गया है आपसे विदा लेने का। सरफिरोजी और सुभद्रा को दीजिए इजाजत। कार्यक्रम आज सवेरे यहीं समाप्त करने की, और आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड।
थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।
नमस्कार।